نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کی اگلی نشست کا آغاز کریں گے. ایمانیات میں سے آج ہم باب نمبر 35 فضل من استبرا لدینہ، اپنے دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے والے کی فضیلت، حدیث نمبر ہے 48 یعنی 48، یہاں سے شروع کریں گے. اور گرین بک جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دارالاسلام کی جو بک ہے اس میں سے پیج نمبر 109 ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا ٹاپک. تو اتنا خوبصورت ہے کہ اسی پہ بات کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن ہم پہلے حدیث کو پڑھیں گے. اور واقعی اس حدیث پہ عمل کر لیا تو ہم نے اپنے دین کو بہت سارے فتنوں سے بچا لیا. حدیث ہے عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اب اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ آپ سب میرے ساتھ دہرائیں گے، کیونکہ وہی زبان نبوی سے ادا ہوئے ہوئے الفاظ تھے. پڑھیے گا، الحلال بیجن والحرام بیجن وبینہما مشبہات لا یعلمہا کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كرائن يرعى حول الحمى يوشك أن يواقيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله في عرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بہت خوبصورت حدیث ہے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر نے اللہ کے نبی سے جو بات کہی اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الحلال بیجن، حلال واضح ہے، والحرام مبین، اور حرام بھی واضح ہے. سچ ہے نا؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اس کو نہیں پتہ چلتا جو پتہ نہیں جگانا چاہتا، جو 25-30-40-50 سال کا بھی ہو گیا ابھی بھی کہتا ہے پتہ نہیں شراب حرام ہے کہ نہیں، سود حرام ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. سب کو پتا ہے، صحابہ کرام کی اس پہ گواہیاں موجود ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اگر ہمارے سامنے سے کوئی پرندہ بھی اڑ کے گیا تو میں اس کے بارے میں بھی بتا دیا. یعنی اللہ کے نبی اتنے مبین قسم کے استاد تھے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر بات بتا دیتے تھے، چھپاتے نہیں تھے. اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی یہ بات ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں تمہیں اس دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلہا کنہارہا، جس کی راتیں اس کے صبحوں کی طرح روشن ہیں. اب بعض لوگ ایک الزام لگاتے ہیں، میں تو الزام ہی کہوں گی اس کو، وہ چاہے کچھ بھی سوچیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، حدیثیں پڑھیں تو بات سمجھ نہیں آتی. پتہ نہیں کچھ ایک حدیث کچھ کہتی ہے، دوسری حدیث اس کی کانٹراڈکٹ کرتی ہے. ہاں پھر چند لوگوں، انسانوں، آئمہ کرام کی کتابوں کو کھول کے پڑھ لو، بڑی کلیئر بات سمجھ آتی ہے. تو یہ لاعلمی کی بات ہے، یہ تو اللہ کے نبی پہ ایک الزام ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک گتم گتا، ایک بہت ڈس آرگنائزڈ، ایک تھیلے میں بند دین پکڑا دیا، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، علم کی گتھیاں کھولیں، آپ کو اللہ کے نبی کی بات سمجھ آتی ہے. پھر اگلی چیز دیکھیے، وہ بینہما مشبہاتن، ہاں حلال اور حرام کے بیچ میں شبہ کی چیزیں ہیں. اصل بات جس پہ لوگ الجھتے ہیں یا الجھنا چاہیے وہ شبہ والی چیزیں ہیں. لا یعلمہا کثیر من الناس، جن میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اکثر لوگوں کو شبہات کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا ہیں، تو کیا کریں؟ اب یہاں سمجھیے، بس آپ دیکھیے، شراب حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے نا، کسی کو شک ہے؟ پانی حلال ہے کہ حرام؟ कोई शक तो नहीं है ना। अब इन दोनों के बीच में कोई एक चीज ले लीजिए, मिसाल दे देती हूँ, मैं नहीं कह रही कि वो हलाल है ऑफकोर्स, लेकिन कोई कहता है शराब तो हराम है लेकिन आज के दौर में बियर और जस्ट लाइक सोडा या कोई ऐसी चीज जिसमें हल्का सा एक नशा या एक तरंग आ जाए तो वो क्या है? अब आप यहां समय उसको इमेजिनेशन में ले कि वो शुबे वाली चीज पड़ गई, शराब है कि नहीं, अल्कोहल है कि नहीं, दूसरी चीज है कि नहीं। तो नबी सल्लम फरमाते हैं फमन तका शुबहातु, जो शुबा से वाली चीजों से भी बच गया, डाउटफुल थिंग्स को छोड़ दो। एक हदीस में आता है द मा यूरिबिक इला मा ला यूरिबिक, जिस चीज में तुम्हें शक आ जाए उसको छोड़ दो, दुनिया में बड़ी नेमतें और खा लो और उस चीज को ले लो जिसमें शक नहीं। तो कहा जिसने शुबे वाली चीजों को छोड़ दिए इस्तबरा ली दीन ही, तो ये चीज उसके दीन के लिए इस्तबरा बन गई, यानी बरात करेगी उसकी, मुराद ये कि उसने अपने दीन को महफूज कर लिया, वह इर्दी ही और अपनी इज्जत को। यहां कितनी बड़ी बात है, मुसलमान का हराम में पड़ना खुद को बेइज्जत करना, ये मुराद है कि जो बंदा शुबे वाली चीजों में पड़ने दीन भी खराब किया अपनी इज्जत भी खराब की। हाँ वमन वकाफ शुबहाती, जो गिर पड़ा, वाका कहते हैं गिरने को, सूरत वाकया भी इसी से, धक्के देना, यानी वाका हो गया, गिर पड़ा, फिर शुबहाती, शुबहतुन की जमा, मशकूक चीजों में, डाउटफुल चीजों में जो पड़ गया, समझे कि वो तो तबाह बर्बाद हो गया। उसकी मिसाल कैसी है, कराइन, राई, राई कौन होता है, शेफर्ड, चरवाहा, यरा हौल अल हिमया, उस चरवाहे जैसी जो शाही चरागाह के पास जानवरों को चराए। मतलब यह है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक शख्स है वो बकरियां चराता है, आप इस पूरे हॉल को समझिए कि ये एक खेत है, हर चरवाहे को क्या चाहिए कि इसके बीच बीच में चरवाहा अपनी बकरियों को चराए, जरा सी बकरी इधर होगी फिर भी खेत में रहेगी, जरा सी इधर होगी इधर रहेगी खेत में रहेगी। अब एक शख्स इधर बकरी को चराने की बजाय इस दीवार के बिल्कुल इधर बकरी को चराएगा तो क्या होगा, जरा बकरी इधर से इधर होगी तो अब आप इमेजिन कीजिए कि इसके दूसरी तरफ किसी और का खेत है, बादशाह का खेत है या किसी का, तो वो डर है ना कि वो बकरी इधर की बजाय उधर भी मुंह मार देगी। ये मिसाल है कि जो अल्लाह की हदों के किनारों पे जाते हैं तो करीब है कि शुबे वाली चीजों में या डाउटफुल चीजों में पढ़ते पढ़ते वो हराम में पड़ जाएंगे। और हकीकतन होता भी ऐसे ही है, पहले दिन से कोई शराब का रसिया नहीं होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ बगैर अपने किसी पर्सनल व्यूज के, सिगरेट नोशी। आपके जहन में सवाल आएगा, अच्छा जी सिगरेट नोशी हराम है कि हलाल है? दोनों तरह के लोग दलाइल आपको दे देंगे, जिनको सिगरेट से नफरत है वो कहेंगे हराम है, जो कहते हैं कि नहीं इसमें हराम का लफ्ज नहीं मिलता तो वो कहेंगे ये हराम नहीं, हलाल तो उसको कोई नहीं कहेगा। आप क्या कहते हैं, मकरूह, ठीक है आप कहते हैं मकरूह है, ये होगी शुबे वाली चीज, सिगरेट शुरू कर दिया, इस ओके सिगरेट ही है ना, उस सिगरेट से आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स और उसी से शराब और उससे सारी चीजों की आदत नहीं डल जाएगी, जहां एक गंदगी आती है वहां दूसरी आती है। तो यही बात आपने यहां फरमा दी कि जो किसी मुश्तबे चीज में मुब्तला हो गया, इसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए, क्योंकि करीब है, यूशिकु अन युवाकियहु, उम्मीद है, करीब है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो उसमें गिर पड़ेगा, बकरी इधर से जाएगी तो उधर मुंह मार देगी। फिर आपने फरमाया अला खबरदार हो जाओ, बी अवेयर, केयरफुल, व इन लिकुल्ली मिल्किन, और हर बादशाह की एक हेमन, एक चरागाह होती है, अला और खूब जान लो, इन हिमल्लाह फी अर्दिही मुहारिमुहु, अल्लाह की चरागाह इस जमीन में उसकी हराम चीजें हैं। कितनी बड़ी बात है, मालिकुल मुल्क, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला, इतनी खूबसूरत चीजें पैदा करने वाला, वो कहता है कि दुनिया में जो मैंने चीजें हराम की है ना, ये मेरी बाउंड्री वॉल्स हैं। अलावा इन नफिल जसद मुदगा, और खूब जान लो जिस्म में गोश्त की बोटी है। मुदगा क्या है, बच्चे की तखलीक के बीच में एक लफ्ज गुजरता है ना, सूरत मोमिनून में भी आती है बात, तो गोश्त की एक बोटी है, इशारा है दिल की तरफ। इजा सलाहत, जब वो सीधी हो गई, सलाहत में जो ते है ना, ये मोनस की है, किसकी वजह से, मुदगतन तोए, ता ताए मरबूता, यानी जब वो सही रहता है, सलहल जसद कुल्लुहु, तो सारा जिस्म ठीक रहता है। वइजा फसदत, जब बिगड़ जाता है ये, फसदल जसद कुल्लुहु, तो बिगड़ जाता है सारा बदन, और वो क्या है, अला वहियल कल्ब, तो खूब जान लो कि वो तो दिल है। क्या पता चला कि दिल ही बादशाह है, जिसको हम कहते हैं ना दिल बादशाह, जिसका दिल अल्लाह के साथ लग गया, अल्लाह की बात पे लग गया, नबी की बात का यकीन आ गया, वो कभी भी हराम तो हराम शुबे वाली चीजों में नहीं जाएगा। मैं इसको आप अपने ऊपर लेके समझाती हूँ आपको। देखिए हम सिस्टर्स हैं ना, हम खाना पकाती भी हैं, हम खाती भी हैं, कभी आपको शक पड़ जाए कि ये केचप खराब है, फिर भी स्टील अपने बच्चे को खिलाते? इट्स पॉसिबल। मीट धोया, पता लगा स्मेल आ रही, कहते कोई बात नहीं जरा मर्चे तेज कर दूंगी, खिला दो, करते? इमेजिन भी नहीं कर सकते। खराब चीज तो छोड़िए, जरा एक्सपायर डेट हो जाए तो हम कहते नहीं बच्चे बीमार हो जाएंगे, मियां साहब की तबीयत खराब हो जाएगी। तो सिर्फ पेट की खराबी का इतना डर, तो रूह की खराबी। अब आप खुद सोचें मेरी जिंदगी में कहां कहां शुबे वाली चीजें। मैं सोचती हूं कि लोग इसको शराब कबाब में ढूंढते हैं, इसको हम अपनी आदत में ढूंढें, अपने अखलाकियात में ढूंढें। इसलिए कि झूठ बोलना हराम है, ये अल्लाह की हद है। बुहतान, गीबत, बदगुमानी और इसी तरह की सारी चीजें जो हैं ये शुबे वाली हैं। बस अपनी जिंदगी को मैं समझती हूं कि अगर हम वाकई इस्लाम के दायरे में रखना चाहते हैं ना, तो बचते बचाते चले। और यही तक वह, किसी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा था कि जो कुरान में आ जाता है कि हुदा लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए हिदायत है, तो ये तकवा क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हें इत्तफाक हुआ किसी जंगल से गुजरते हुए, पतले से रास्ते से गुजरने का, कि जिसके दोनों तरफ कांटों वाली शाखें हों? कहा हां हुआ। कहा बताओ कि जब कोई वहां से गुजरता है तो कैसे गुजरता है? तो कहा वो बहुत सिमटता है, फिर अपने कपड़े सपेटता है, फिर बड़े सोच फूक फूक के कदम रखता है, इधर रखूं कांटा लगा, उससे चुबा लूं, बचा लूं, करते करते वो निकल जाएगा। कजा का तकवा, ये तकवा। इस जिंदगी की शाहराह में गाड़ी चलाना आसान नहीं है। बाज दफा हम ड्राइविंग में एक्सपर्ट नहीं होते, हम कहते हैं हम हाईवे पे नहीं जा सकते, बाज दफा हम कहते हैं हम क्राउडेड जगहों में नहीं जा सकते। तो जिंदगी का ये सफर बहुत एहतियात से बसर करने की जरूरत है। हम इस दुनिया में हर वक्त इंस्पेक्टेड है, कैमरे की निगाह आपके ऊपर है। आप अपने दिल के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा लें, और वो दिल है, अगर दिल ठीक तो सब ठीक। कितनी बड़ी बात है। और इमाम बुखारी यहां से क्या साबित कर रहे हैं कि शुबे वाली चीजों से परहेज करना तकवा की अलामत है। और आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, आपको यही तीन किस्म के लोग मिलेंगे। नंबर एक, हराम में इंडल्ज, फासिक, रिबेलियस, वो कहते हैं ही नहीं गुनाह। कि यहां तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि शुबे अली को छोड़ो, आज हमने सरीहन हराम को यूं पकड़ा हुआ जैसे वो हथेली का छाला नहीं कुछ और है। सूद हराम है कि नहीं? किसी को शक है आप में से बैठे हुओं को? चार उसके दलाइल तो सिर्फ कुरान में मौजूद है, जो हदीस नहीं मानते वो भी सूद को हराम मानने पे मजबूर है। तो कितने लोग हैं जो सूद से बचे हुए? कैन यू बिलीव? तो जो एक मुबहम, जिसका आप कहें कि सरीहन हराम चीज में इंडल्ज हो गया, क्या फिर वो शुबे वाली चीजों में नहीं पड़ेगा? तो याद रखिए, हराम का ताल्लुक खाने से भी, बोलने से भी, देखने से भी, पहनने से भी, दिल से भी, जिस्म के हर उससे हराम का इर्तिकाब हो सकता है। कुछ लोग बाकी सब चीजों में केयरफुल होंगे, शर्मगाह से पकड़े जाएंगे, कुछ बाकी सारी चीजों में ठीक होंगे, सोचें गंदी हैं, किसी की सिर्फ जुबान गंदी है। वैसे बहुत मुत्तकी पार्स हैं। मैं तो सोचती हूँ कि अल्लाह की जात ही है जो हिसाब लेगी, मैं और आप तो नहीं ले सकते, अपना नहीं ले सकते, किसी और की तो हम फिक्र ही ना करें। तो जरूरत है इस बात की कि सोच के चले। जिंदगी का सफर बहुत कठिन है। साहबे करम इतने दुखी होते थे, यकीन करें कि हजरत उमर का कॉल आता है, कहते थे कि मेरा एक पांव जन्नत में हो और एक पांव जन्नत से बाहर हो, मैं फिर भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूं जब तक मेरा दूसरा पांव भी जन्नत में ना पहुंचे। और कहते हैं कभी मैं सोचता हूं कि मैदान हशर में अल्लाह ताला एक आवाज लगाता है कि आज मैंने सबको बख्श देना है, एक शख्स को नहीं बख्शना, तो मैं कहता हूं कि उमर बिन खत्ताब ये तू है जिसको अल्लाह ने नहीं बख्शना। इतना खौफ आता है अल्लाह से। लेकिन दूसरे लम्हे सोचता हूं कि अल्लाह ताला कहता है आज मैंने किसी को भी नहीं बख्शना, बस एक बंदे को मैंने माफ कर देना, और मैं कहता हूं उमर ये भी तू ही है। कैसे अलीमान उबैदन अल खौफ वर रिजा। तो हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट रखें, ओवर एस्टिमेट ना करें। हमारा दिल अंदर से बोल रहा होता है तुम देखो तुम अच्छी हो, ये तुम्हारी दोस्त है, ये तुम्हारे ससुराली, ये खाला, ये फलां, ये रिश्तेदार, ये ससुर, ये शौहर। हर वक्त अंदर से वो तीर निकलते हैं। जिस दिन ये तीर निकलने बच गए, सारी चीजें आपके अंदर गई, तो आप लेजर बन जाएंगे। यकीन करें, हासिबू कबलन तो हासिबू। ये भी हजरत उमर का एक कौल है, और हदीस में भी कुछ अल्फाज ऐसे मिलते हुए कि अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तो हदीस हमें अपने मुहासबे की दावत देती है कि हम अपनी फिक्र करें और अपने आप को ढूंढें कि मैं कहां खड़ी हूं। सारी दुनिया भी देखे जन्नत में चली जाए और मैं ना जाऊं तो मैंने क्या पाया बताइए? और अगर मुझे अल्लाह माफ कर दे और मेरी सारी कोशिश के बावजूद मेरा कोई प्यारा जन्नत में नहीं जा सका, जन्नत में आपको कोई मलाल नहीं होगा। تو فکر اپنی کرنی ہے کہ ہم بچائیں، اور آغاز دل سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال بڑھتے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث خمس کے بارے میں، بظاہر ہمارا اس میں کوئی اتنا ڈائریکٹ ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن ایمان کی جو شرائط ہیں جو شروع میں بھی ہم نے پڑھی تھی 63، اس میں سے ایک چیز بھی یہی ہے. تو کیا ہے اگلا باب؟ باب کیا ہے؟ ادا الخمس من الایمان، خمس کا ادا کرنا جزو ایمان ہے. اب جن ساتھیوں نے ابھی قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ خمس کیا ہوتا ہے. تو خمس مال غنیمت کا وہ پانچواں حصہ ہے جو امیر کو ملتا ہے، یعنی لیڈر کو ملتا ہے، جس کو پھر وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتا ہے. اور اس کے اوپر سارے سورۃ انفال اور دسویں پارے کی پہلی آیت میں احکامات موجود ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان وفد عبد القیس لما اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب قبیلہ عبد قیس کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قالا، تو آپ نے فرمایا، من القوم، یہ لوگ ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ یا آپ نے فرمایا، او من الوفدی، یا یہ کون سے وفد کے لوگ ہیں؟ قالو، لوگوں نے کہا، ربیہ، تو ہم ربیہ خاندان کے لوگ ہیں. قالا، پھر آپ نے کہا، مرحبم بالقوم، مرحبا، ویلکم ہو تم کو اے لوگو. یہاں سے ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتیں نوٹ کریں کہ پہلے آنے والوں کا تعارف لینا چاہیے، کون ہو، کیسے ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آنے والوں کو ویلکم کہنا چاہیے، مہمان نوازی اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کو ملنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کھلائیں گے کیا، پانی تو ہے نہیں، جوس تو ہے نہیں گھر میں، اور مہمان کو دیکھ کے ہم روز سٹ پٹائے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ شرمندہ ہوتا ہے، ہم کیوں آگے. چاہے مہمان بتا کے آئے، چاہے اچانک آ جائے، جب آگے مرحبا. لیکن مسئلے کیا ہیں کہ ہماری عزت کے مسئلے، پروٹوکول ہے وہ نہیں. آپ کو ملنے آیا وہ آپ کا جوس تو پینے بھی نہیں آیا، ہے تو پلا دے، نہیں ہے تو اس کو بھی پتا ہے اچانک آئے ہیں. اور یہ گھر ہے، کوئی سٹور تو ہے نہیں کہ جہاں ہر وقت ہر چیز اویلیبل ہو. سٹوروں میں بھی ہر وقت نہیں ہوتی، کبھی وہاں بھی کہتے ہیں کہ سٹاک میں نہیں ہے. اصل بات یہ کہ آپ لوگوں کو اسمائلی فیس کے ساتھ ملیں. ہاسپیٹیلیٹی بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں کلچرلی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں حالات کے اندر بھی آ جاتی ہیں. تو اپنے لیے عمل کی بات لکھیں، ہمیشہ آنے والے کو دیکھ کر اسمائل دینا، چاہے وہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے یا کہیں آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جب ان کو مرحبا کہا، او بال وفدی، یا وفد، یعنی یہ دونوں میں اشکال ہے کہ وفد کہا آپ نے یا قوم کا. صحابہ کی اس میں آپ کو صداقت دکھ رہی ہے. یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے لفظ قوم بولا کہ وفد بولا، تو دونوں ہی لکھ دیے. امام بخاری کی بھی اس میں صداقت ہے. خیر، غیر خزایا ولا ندامہ، آپ نے کہا، نہ تم ذلیل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے، یعنی فکر نہ کرو، آؤ، ہم تمہاری بےزتی بھی نہیں کریں گے، ہم تمہیں شرمندہ بھی نہیں کریں گے. یہ جو لفظ ہے نا مرحبا، اس کو دیکھیں گے تو یہ دونوں لفظ سمجھ آئیں گے. مرحبا لفظ کیا ہے؟ راہوبا سے، راہوبت کا لفظ سورۃ توبہ میں آتا ہے، وَإِذَا ضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. تین لوگوں کا قصہ آتا ہے کہ زمین تنگ ہوگی اپنی کشادگی سے. تو مرحبا کو ہم کہتے ہیں نا جب کسی کو جس کا تھا کہ تمہارے لیے اس گھر میں بہت جگہ ہے. رحبا، بازو بھی کھول دیتے ہیں نا بازو پر مہمان کو دیکھ کے. تو مراجع کہ اس گھر میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے. غیر خزایا ولا ندامہ، اس سے عمل کی بات لکھے کہ مہمان کو نہ تو شرمندہ کرنا چاہیے نہ ذلیل کرنا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، آج کدھر سے رخ کر لیا آپ نے، آ گیا ہمارا خیال، بس آج وہ اماں آنے والی ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے تو آپ آ گئی ہیں، کیا اب اماں کو بتانا پڑے گا. یقین کریں بعض دفعہ ہم اپنوں کو جتنا شرمندہ کرتے ہیں اتنا تم غیروں کو بھی نہیں کرتے. اور بے تکلفی میں آ کے کسی کو کچھ بھی کہیں، بس آ گئی کھانے کے وقت پہ، آپ پتہ چل گیا آپ کو میں نے چائے بنائی ہے تو آپ ٹپک پڑی. نہیں بولنا چاہیے. ایک وقت کسی کو بات اچھی لگتی ہے، دوسرے وقت اس کو وہ بات بری لگے گی. بے تکلفی رشتوں کو نازک کر دیتی ہے. جس کو آپ نے چھوڑنا ہے نا، اس سے بے تکلف ہو جائیں، یقین کریں. سیدھی سی بات ہے، ایک اچھی اچھی بات ہوتی ہے وہی بات اتنی بری لگتی ہے، بعض دفعہ اچھا خاصا جھگڑا بڑھ جاتا ہے. تو کیا کہا؟ خوش خبری ہے، ویلکم، نو پرابلم. فقالو، پھر وہ بولے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لا نستطیعو، ہم اس قابل نہیں ہیں، اس کی طاقت نہیں رکھتے، ان ناتیہ کا، کہ ہم آپ کے پاس آئیں، سوائے الا فی الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں میں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس صرف سال کے یہ چار مہینوں میں آ سکتے ہیں، باقی وقتوں میں نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ وبیننا وبینک، کہ آپ کے اور ہمارے درمیان، حازل حی من الکفار مدر، کہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں کفار کا قبیلہ مضر رہتا ہے، یعنی لڑاکے تھے اس دور میں، اتنے حالات خراب تھے، चोरियां डाके होते कि हुरमत के महीनों में जो बाहर आते लोग उसको कुछ ना कहते, इसके अलावा लूट लेते, मार देते। इतना अरब के माहौल खराब था जहां अल्लाह के नबी आए। तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ हुरमत के 4 महीनों में सफर करते, और वाकई ये 4 महीनों में उनकी तिजारत होती थी। पूरा साल आप कह लें हड़तालें और स्ट्राइक्स, कारोबार बंद, और इस महीने में करते थे। तो खैर, फमुरना बी अमरिन फसलिन, लिहाजा आप खुलासे के तौर पर हमें कोई ऐसी बात बता दें कि नुखबिर बिही मंवराना, हम जिसकी इतला अपने पीछे वालों को दें, और साथ ही साथ व नदखुल बिहिल जन्नता, उस पे अमल करें और जन्नत में जाएं। समझ आइए बात। ये वो मसरूफ तालिब इल्म है जो कहते हैं कि हम बार बार नहीं आ सकते, हम एक दफा आ गए हैं तो हमें कोई ऐसी बात बता दें कि जो हम जाके अपने पीछों को भी सिखाएं और हम उस पर अमल करें तो जन्नत में जाएं। ये बेचारों की तो मजबूरी थी ना, रास्ते की ट्रैवलिंग और उसके प्रॉब्लम। आज भी कुछ लोगों का यही स्टाइल होता है, किसी एक महफिल में बस पहुंच तो जाएं। उनका दिल करता है सारे सवालों के जवाब भी लेके जाएं, नेल पॉलिश शराब में क्या लाल है और नमाज कैसे पढ़ते हैं और क्या कुछ करते हैं। ये बात लोगों का अंदाज होता है। एक दर्स में आएंगे, सीधी सीधी बात है, तो कोई भी सिंपल सी है, वो उसमें हर मौजू छेड़ते हैं। ये पसंदीदा बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहां इन्होंने पहले अपना उजर बताया है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप मक्का जाएं, आपको वहां सीरिया के कोई उस्ताद नजर आ जाए, तो आप उनको कहते हैं कि देखें मैं तो सीरिया जा नहीं सकती, आप मुझे आज मिले हैं तो आप मुझे इस वक्त से भरपूर फायदा उठाने वाला बना दें। ये मुराद है, यहां से आपको उनकी इल्म की तड़प भी पता चलती है। और दूसरी बात यहां ये नोट कीजिए कि हम जो सुने वो अपने पिछलों को बताएं, जो सीखते हैं ना ये दूसरों को बताना चाहिए, लेकिन वैसे ही बताएं जैसे सुना है। और अगर उसमें एग्जैजुरेशन करके कुछ कमी बेशी करनी है तो उससे बाद दफा रिएक्शन भी हो जाता है। तो बहरहाल ये बात भी आ गई। फिर अगली चीज देखिए, नदखुल बिहिल जन्ना, सहाबा का अल्लाह के नबी से ताल्लुक क्या था। अब यहां रुकिए और जरा आज के दौर पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। सहाबा के अल्लाह के नबी के पास आकर ये नहीं कह सकते थे कि अल्लाह के नबी कोई वजीफा बता दें, खुद भी पढ़ें, अपने पिछलों को भी बताते रहे और हमारी बच्चियों की शादियां हो जाएं, सारे बीमार ठीक हो जाए, मुझे शुगर बढ़ी रहती है, वो मुझे कोई आयत पढ़ने को दे दे, मैं पढ़ूं, पानी पे फूकूं और पीऊं तो खत्म। सहाबा क्या पूछते थे इल्म दें? सहाबा के अल्लाह के नबी के साथ जो सफर होते थे या जो आपके साथ मुलाकातें होती थी, वो इल्म की महफिलें होती थी। दुख की बात है, कुछ सब नहीं, कुछ लोगों ने आज दीन को सिर्फ वजीफों का और दम दरूद का एक जरिया बना लिया, चिल्लाकशी, और इल्म की बात करें तो कहते हैं ये तो बड़े लोगों की बात है, आम लोग कैसे पढ़ पढ़ा सकते हैं। तो यहां से हमें मिजाज समझ आता है, अमल की बात जो है, इल्म लीजिए, आप इल्म लेंगे इंशाल्लाह जन्नत में जाना भी आसान होगा। फिर उसके बाद देखिए, वसालूह अनिल अशरीबती, उन्होंने आपसे सवाल किया मशरूबात के बारे में, अशरीबा मशरूब से। अब उनको कुछ सवाल पूछने थे, हलाल आराम की बातें थी, तो कहा अच्छा जी हमें मशरूबात के बारे में बता दीजिए। फमरहुम बि अरबईन, आपने उनको 4 बातों का हुक्म दिया, व नहाहुम अन अरबईन, और 4 चीजों से रोक दिया। सीधी सी बात है, पूछा तो आपने 4 चीजें जो पीने की थी वो भी बता दी, 4 बातों से हराम का रोक दिया, खत्म। आगे क्या हुआ, अमरहुम, फिर उनको हुक्म दिया, बिल ईमानी बिल्लाहि वहदहू, सिर्फ एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का। काला, फिर आपने पूछा, अतदरूना मल ईमानु बिल्लाहि वहदहू, क्या तुम जानते हो एक अल्लाह अकेले पर ईमान लाने से क्या मुराद है, क्या होता है ईमान। यहां से पता चलता है अच्छा टीचर सिर्फ खुद नहीं कहता, स्टूडेंट से दोहरवाता भी है कि वाकई इन्होंने बात समझी है कि नहीं। तो कालू, वो कबीले के जो लोग थे बोले, अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये क्या अंदाज है कि मजीद पता चले। बहुत ही सहाबा कराम का मारूफ जुमला ये होता था अल्लाह के नबी के सामने, जब कोई सवाल पूछते थे कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आलमु, वो ज्यादा जानते हैं। क्यों करते थे, झूठ है। मुझे एक बच्चियों की क्लास में से सवाल लिख के भेजा एक टीचर ने, नॉर्वेजियन पढ़ाती हैं, तो उन्होंने से सवाल मुझे लिखा कि क्या सहाबा झूठ बोलते थे, पता तो उनको होता था। तो मैंने उसके जवाब में यही 2 जुमले लिखे कि मजीद इल्म हासिल करने की हिर्स उनको ये कहती थी। आलम कह रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं पता, वो कहते हैं आपको हमसे ज्यादा पता है। और याद रखिए, जिसका ये रवैया होगा ना, वो बहुत सीखेगा। कुछ लोग सुनने नहीं आते, वो सुनाने आते हैं। वो सुनते हैं कानों से और अंदर से बोल रहे होते हैं हमें तो इससे भी ज्यादा पता है, ये कम क्यों बता रहे हैं, हम तो इससे भी ज्यादा जानते हैं। तो ये तकब्बुर है। तो साहबा की आजिज़ी इसमें हमें दिखती है। खैर, आप अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। काला, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, वन मोहम्मदन, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह ही अल्लाह के रसूल हैं। तीसरी चीज़ व इकामुस्सलाती, नमाज का कायम करना, व ईताउ ज़कती, ज़कात का अदा करना, व सियाम रमदान, और रमज़ान के रोज़े रखना, और वान तू मिनल मगनमिल खुमस, और माले गनीमत में से खुमस का अदा करना। यह है वो हिस्सा जिसकी वजह से ये हदीस इमाम बुखारी यहाँ लेकर आए। इतनी बड़ी बड़ी नेकियों में, नमाज, रोज़ा, ज़कात में इस नेकी को पेश कर दिया कि माले गनीमत में से खुमस का अदा करना। यानी अमीर जो होता है, जो लश्कर का बड़ा होता है, उसका हक नहीं मार सकते आप। देखिए कि ये एक अलग इस्तिलाह है जिसकी हम अभी इतनी डिटेल्स में जा नहीं सकते, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि हकदार का हक मारकर तुम दीनदारी नहीं रख सकते अपनी पूरी। तो कहा कि हुमस का अदा करना, व नहा हुम, और रोका किस चीज़ से, अनरबिन, चार चीज़ों से। ये कौन सी थी, चार काम करने का हुक्म जो गुजर गए, अब चार चीज़ें जो रोकने की थी। इससे भी एक अमल की बात खूबसूरत मिलती है कि अल्लाह के नबी बाज़ दफ़ा गिन गिन के चीज़ें बताते थे, बैलेंस रखते थे, चार अच्छी तो चार बुरी, तीन अच्छी तो तीन बुरी। इससे फ़ायदा क्या होता है, बात याद रहती है। अच्छा, वो कौन कौन सी चार थी, ये चीज़ मुराद है। तो जिन चार चीज़ों से अल्लाह के नबी सल्लम ने रोका वो क्या है, अलखंतमी, व दुबाई, व नकीरी, वल मुजफ़्फ़ती। ये चार बर्तनों के नाम है, बड़े बड़े मटके। ये जो लफ्ज़ है ना हंतम, इसके नीचे आप लिख लीजिए मटके, मट्टी के बनाए जाते थे, बिल्कुल मटके कह सकते हैं। दुब्बा क्या होता है, कद्दू, आप लोगों ने वो देखा है जो ऑरेंज कलर का पंपकिन। अरब लोग क्या आप करते थे कि पंपकिन एक फ्रूट होता है ना, उसको खोलते, फिर उसके अंदर से जो उसका गूदा था वो निकाल के, जो बाहर का छिलका होता है ना, उसको सुखाते थे तो एक प्याला बन जाता था, उसमें शराब बनाते थे। ये एक शराब बनाने का बर्तन था, ये वो वाला दुब्बा। वह नकीरी, नकीर क्या चीज है, लकड़ी के तराशे हुए लगन, लकड़ी से जो बर्तन शराब के लिए बनाया जाता है उसको नकीर कहते थे। और खास तौर पे कहते हैं कि ये जो बर्तन होता है, ये खजूर के जो तने होते हैं ना, उसकी लकड़ी को सुखा के तो एक किस्म की ढाल लेते थे। आपने कभी खजूर लगी देखी तो उसमें वो यूं इस तरह के सिट्टे होते हैं, ऐसे चपटे चपटे से हैं। तो अरबों में जाहिर है कि इस तरह के बर्तन हमारे नहीं थे जैसे हैं, प्लस ये कि जिस तरह खजूर में असर है तो उसके पत्तों में भी कोई असर था। तो ये इन चीज़ों में वो फिर लकड़ी से तराशे हुए लगन भी बना लेते थे, उसका जिक्र कर दिया। और साथ ही फरमा दिए वल मुजफ्फती, तारकोल से बने हुए बर्तन, यानी ये जैसे लुक होती है प्लास्टिक कह लीजिए या कुछ इस किस्म, ये उस दौर का एक रिवाज था कि तारकोल से रंगे हुए रोखनी बर्तनों से आपने उनको मना कर दिया। मुराद ये कि इनको शराब बनाने के लिए इस्तेमाल ना करो। काला और फरमा अल मुकय्यरी, यानी ये वो मुकय्यर उसी का नाम है जिसके ऊपर बात कर दी, तारकोल के जो रंगे हुए बर्तन है उसको मुकय्यर कह रहे हैं। कि फिर आपने फरमाया वकाला उखफजू हुन्ना, हिफाजत करो इनकी, वह भी रू भी हिन्ना मम वराकुम, और इसकी खबर दो उनको जो तुम्हारे पीछे हैं। अब इसमें देखिए कि पहली बात यह है कि खुमस हमारा मौजू नहीं है, दूसरी बात है कि ये शराब जिन बर्तनों में वो बनाते थे उस दौर का रिवाज था, गोया कि आज हमारे लिए इसमें यही बात है कि शराब हराम है। अगली बात यह कि इसमें हुरमत के महीनों की बात हुई, तो हुरमत के महीने कौन से हैं, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, तीन मुसलसल हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। इन तीन महीनों की हुरमत क्यों है, हज की वजह से। जब लोग दूर से ट्रैवल करते थे तो ज़िलक़ादा में सफ़र शुरू कर देते थे और ज़िलहज में मदीना पहुंच जाते थे, वहां रहते थे, हज पूरा होता वापस जाते तो मुहर्रम में जाके वापस पहुंचते थे, तीन महीने लग जाते थे हज के लिए, और रजब में उमरे का एहराम बांधते थे। यानी इतनी खराबियों के बावजूद भी हज और उम्रे का एहतमाम अरब लोग भी करते थे, तो ये उसी वजह से चार महीने की ताजीम थी, हाथ भी इस पर नहीं उठाते थे। और दूसरी बात इससे ये पता चल गई कि जो इल्म इंसान के सीने में आ जाता है वो ज़रूर और ज़रूर अमल पर इंसान को माइल करता है। और हकीकत यह है कि एक इंसान अपने ऊपर इसको लेकर सोचे। आप इस सारी हदीस को जो हमने पढ़ी, काफी तवील भी थी और इसमें बहुत सारी चीजें थी जो हमारे लिए अमल की बातें, लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त आप भी तो इल्म की महफिल में बैठे हैं ना। हो सकता है कोई आपसे कहे कि इतनी देर में तो आपने 10 दफा सूरह यासीन पढ़ लेनी थी, मुमकिन है ना। आप 200 बार दुरूद शरीफ पढ़ सकती थी, आप सब बैठती, जितने लोग यहाँ आप माशाल्लाह बैठे हैं, मेरा हाल है जितनी देर से हम बैठे हैं हम 2-2.5 कुरान तो पढ़ लेते हैं ना। ये बताइए कि जब आप वहां से उठ के जाते तो आपके साथ क्या होता, क्या आपको उस कुरान का एक लफ्ज भी समझ आया, कोई अमल पे चोट पड़ी? आज अभी कितने मिनट हुए हमें यहाँ बैठे, लेकिन हमें कितनी अमल की बातें, ये इल्म की शान है और यही मिजाज है। अगली जो दो हदीसें इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे आज ही, लेकिन वो आपने पहले की हुई हैं, पहली शुरू की हदीसें हैं, लेकिन यहाँ इसको लाने की वजह क्या है इसको मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। बाब नंबर 37, मा जान नल आमाल बिन नियाती, सवाब के तमाम काम नीयत पर मौकूफ होने का बयान, यानी वही पहली हदीस किताब की कि इन्नमल आमाल बिन नियात। अन उमर रजी अल्लाह अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से यह हदीस गुजर चुकी क्या, कि आप भी जरा दोहरा लें क्योंकि लफ्ज बड़े खूबसूरत है और यह हदीस सबको जुबानी याद भी होनी चाहिए। इन्नमल आमालू बिन नियत, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। वक़द तकद्दम फ़ी अव्वलिल किताबी, कहते हैं कि ये किताब के शुरू में बात गुजर चुकी है। वज़ादा हुना बादा कौली, यहाँ सिर्फ इसमें एक इजाफा होगा, यानी बात गुजर गई है लेकिन इसमें एक लफ्ज क्या, व इन्नमा लिकुल इमरी मा नवा, बेशक हर आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की होगी। ये बातें वहां नहीं हुई थी, ये यहाँ आ गई हैं। फमन कानत हिजरत हु इल्लाही व रसूलिही, बस वो जिसकी हिजरत हुई अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो फ हिजरत हु इल्लाही व रसूलिही, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी। वह सरत बाकी अल हदीस, और फिर उसके बाद उन्होंने बाकी हदीस को बयान किया जो कि गुजर चुकी है। तो यहां से अब इस हदीस को यहाँ लाने की वजह क्या है कि ईमान का ये हिस्सा है कि हम अपने आमाल की नीयत के ऊपर अजर के तालिब रहे, ये मुराद है। नीयत आपकी कुछ और थी, काम कितना भी खूबसूरत करते हैं अल्लाह को उसकी परवाह नहीं, और इसका ऑपोजिट भी होता है। इसी के एक खूबसूरत दलील अगली हदीस में देखिएगा। ये हदीस तो मुझे यकीन है कि मैं आपसे नहीं भी कहूंगी तो आपने याद भी कर लेनी है, जाके लफ्ज बलफ्ज अपने मियाँ को भी सुनानी है और उनको भी कहना है ये होमवर्क है कि आप याद करें, तो फिर कह दूं कि अगली हदीस आपके मियाँ का होमवर्क है। बहरहाल दोहराइए जरा मेरे साथ। عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اب اس کے آگے الفاظ ہیں حدیث کے اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها فهو له صدقه। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, आपने फरमाया इजा जब अनफका खर्च करता है या खर्च किया रजुलू किसी आदमी ने अला ऊपर अहली ही अपनी बीवी के, अपनी अहलिया पे अपनी बीविया पे खर्च किया, शर्त क्या थी, यह तसीबुहा गुमान करता था सवाब को, यानी उम्मीद थी सवाब लेने की, तो फहुवा लहू सदकतुन, तो वो उसके लिए सदका है। यानी मर्द अपनी बीवी पर खर्च करता है, ये बताइए कि ये कोई कहने की बात है? मर्द कितना खर्च करते हैं, सारी करते हैं, काफिर भी करते ही होंगे किसी हद तक जो जिम्मेदारी कबूल कर ही लेते हैं, लेकिन नीयत की वजह से ये काम सदका बन जाता है। और अपनी बीवी पर खर्च करना और सदका लेना, मुझे ये बात कहते हुए पता नहीं क्यों याद आ गया, एक सहाबी थे अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कहा मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा। आपने कहा अच्छा, अब क्या? आपने कहा कि इसका कफारा दो। किसका मुखसिर, क्या कफारा जी? मुसलसल 60 दिन के रोजे रखो। कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इतनी ताकत होती तो नौबत ही ना आती। कहा फिर? कहा अच्छा फिर ऐसा करो कि 60 मिसकिनों को खाना खिलाओ। कहा अल्लाह के नबी इतनी गुर्बत है, 60 मिसकिनों को खाना कहां से खिलाऊं? कहा अच्छा बैठ जाओ। बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह के नबी सल्लम के पास किसी ने खजूरों का एक बड़ा सा थाल भेजा, कि अल्लाह के नबी ये गरीबों में बांट दें सदका। आपने कहा वो आदमी किधर है? कहा वो बैठा। कहा इधर आओ। आपने कहा इधर आओ, ये मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं, ये तुम जाओ और गरीबों में बांट दो। अल्लाह के नबी मदीना शहर में मेरे घर से भी ज्यादा कोई गरीब होगा? कहा नहीं। तो कहा फिर मैं ये सारी अपने घर में ले जाऊं। ये है इस्लाम, इसको कहते हैं अल इस्लाम। हम कहते हैं कि रोएंगे तो मुसलमान होंगे और नेक होंगे, हंसना तौबा करो मस्जिद और हंसना चुप तौबा, पता नहीं कहां खड़े हो। हम दीन को गरीब मस्कीन मुफलिस का लाश क्योंकि हम मुत्तकी हैं। मुत्तकी होने का मतलब यह है कि हमारे माथे पे तेवरी है, दुखी है और हम फिक्रे आखिरत में मगन है। याद रखिए दीन खुश रहना सिखाता है। अगर दुनिया में किसी को खुश रहने का हक है तो वो एक सच्चे मोमिन को है। तो लिहाजा यहां से क्या पता चला, घर का खर्च। अब आप बताइए कि आप इस हदीस के साथ क्या करने वाले हैं? घर जाके बताएंगे और फिर अगली दफा वो आपको जरूर भेजेंगे। जिस सिस्टर को हदीस क्लास की इजाजत ना मिले वो ये हदीस अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखें और अपने शोहरों तक पहुंचा दें, और फिर वो कहेंगे आज से वो जो सदका देता था अलग से वो खत्म, क्योंकि तुम्हें भी सदका ही दे रहा हूं। देखिए सदका लफ्ज समझ लीजिए, सिद्क सच्चाई, सिंसेरिटी ट्रू ट्रुथनेस फुलफिलनेस, यानी जितना भी आप इसको वाइडली फैला लें उतनी ये बात आपको इंशाल्लाह खूबसूरती से समझ आएगी। लेकिन शर्त फिर वही है कि आपके दिल में नीयत अच्छी हो। इंशाल्लाह इसी पे आज हम अपना सेशन पूरा करेंगे। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।